स्वागत है आपका नमस्कार भारत में, मैं हूं इकबाल अहमद। तारीख 8 दिसंबर और दिन मंगलवार। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज आज जाएंगी पाकिस्तान। विपक्ष के हमलों पर पार्टी ने कहा,
हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि विदेश मंत्री महोदया 10 तारीख को इसी सदन में आएंगी और जिन विषयों को आपने रखा है उन सारे मुद्दों पर वो जानकारी देंगी।
बाढ़ प्रभावित चेन्नई में कुछ संगठन बांट रहे हैं सैनिटरी नैपकिन। दिल्ली में आसमान के नीचे रात गुजारने वालों पर एक खास रिपोर्ट।
जी हम क्या करें, हमारे माँ बाप यही खत्म हो गए तो हम यही रह गए। 18 साल से यही रह रहा हूँ। ये कश्मीर के जब मैं आया था, जब मैं चड्डी पैदा नहीं आया तब से मैं रह रहा हूँ।
दिल्ली टेस्ट जीत कर भारत ने 3-0 से की अपने नाम सीरीज। अखबारों की समीक्षा भी, लेकिन पहले सुनते हैं विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार प्रगति सक्सेना से। भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज अफगानिस्तान के मुद्दे पर होने वाली हार्ट ऑफ एशिया बैठक में हिस्सा लेने के लिए पाकिस्तान पहुंच रही हैं। संभावना है कि इस दौरान वे पाकिस्तान के विदेश मंत्री सरताज अजीज से भी मुलाकात करें। इससे पहले बैंकॉक में दोनों देशों के सुरक्षा सलाहकारों के बीच हुई बातचीत पर नाराज विपक्ष ने सरकार की आलोचना करते हुए पूछा कि इस मुलाकात को इतना गोपनीय क्यों रखा गया। अमरीकी जांच एजेंसी FBI ने कहा है कि कैलिफोर्निया के सैन बर्नार्डिनो में जिस दंपति ने गोलीबारी की थी वो कुछ समय से चरमपंथी गतिविधियों की तरफ आकर्षित थे। FBI के एक असिस्टेंट डायरेक्टर डेविड बॉडिज ने बताया कि सैयद फारूक और उनकी पत्नी तशफीन मलिक ने हमले से कुछ दिन पहले निशानेबाजी का अभ्यास भी किया था। एक स्वास्थ्य केंद्र पर की गई इस गोलीबारी में 14 लोग मारे गए थे। डेविड बॉडिज ने बताया कि इस दंपति के घर से 19 पाइप भी मिले हैं जिनसे बम बनाए जा सकते थे। उधर रिपब्लिकन पार्टी से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के दावेदार डोनाल्ड ट्रंप ने मांग की है कि फिलहाल कुछ समय के लिए मुसलमानों के अमेरिका में दाखिल होने पर पूरी तरह से रोक लगा दी जाए। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हाल के एक सर्वेक्षण से पता चलता है कि मुसलमानों के मन में अमेरिका के प्रति नफरत है और जब तक अधिकारी ये तय नहीं कर पाते कि इसकी क्या वजह है तब तक लोगों की इस खतरे से हिफाजत करनी चाहिए। लेकिन व्हाइट हाउस ने कहा कि ट्रंप का ये कथन अमेरिका के मूल्यों और राष्ट्रीय सुरक्षा हितों के खिलाफ है। संयुक्त राष्ट्र ने दुनिया भर के मुख्य मानवीय संकटपूर्ण हालात में राहत कार्यों के लिए 20 अरब डॉलर के फंड की अपील की है। इसमें से 8 अरब डॉलर सीरिया में संघर्ष से प्रभावित लोगों की सहायता के लिए खर्च किए जाएंगे। संयुक्त राष्ट्र के आपातकाल राहत सेवा के समन्वयक स्टीफन ओब्रायन ने कहा कि इस वक्त जरूरतमंद और संकट में फंसे लोगों की तादाद पहले से कहीं ज्यादा है।
Human suffering has reached levels not seen since the Second World War. More than 125 million people.
कुल मिलाकर स्थिति काफी खराब है। मानवीय कष्टों और संकटों का ये स्तर दूसरे विश्व युद्ध के बाद पहली बार देखने में आ रहा है। 2016 में 12 करोड़ 50 लाख लोगों को जीवित रहने के लिए मदद की जरूरत होगी। हम अपने सहयोगियों से अपील करते हैं कि वे दुनिया के जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए 20 अरब डॉलर की मदद दें। ये थे स्टीफन ओब्रायन के शब्द। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। सीरिया में सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि देश के उत्तर पूर्व में हुए हवाई हमलों में कुछ बच्चों समेत कम से कम 26 आम नागरिक मारे गए हैं। इसकी बहुत संभावना है कि यह हवाई हमले अमरीकी नेतृत्व वाली गठबंधन सेना ने किए हों। अमरीका ने इसकी कोई पुष्टि नहीं की है, लेकिन बगदाद में एक प्रवक्ता ने कहा कि मामले की जाँच की जाएगी। इससे पहले सीरिया की सरकार ने इल्ज़ाम लगाया था कि हवाई हमलों में गठबंधन सेना ने उसकी सेना के 3 जवानों को मार डाला। BBC समाचार।
एक बार फिर स्वागत है आपका कार्यक्रम नमस्कार भारत में, मैं हूं इकबाल अहमद। आज है दिसंबर की 8 तारीख और दिन मंगलवार। कार्यक्रम की शुरुआत भारत पाकिस्तान संबंधों से। भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज आज पाकिस्तान जाएंगी। वो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में अफगानिस्तान के मुद्दे पर होने वाले हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेंगी। सुषमा का पाकिस्तान दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जबकि दोनों देशों के रिश्तों में जमी बर्फ शायद पिघलती हुई दिख रही है। विपक्षी पार्टियों ने इस पर विरोध प्रकट करते हुए कहा है कि सरकार को बताना चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के बीच क्या सहमति हुई है। सरकार ने कहा है कि विदेश मंत्री 10 दिसंबर को संसद में इस मुद्दे पर बयान देंगी। एक रिपोर्ट के साथ अमल चौधरी।
भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज आज से पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में शुरू हो रही हार्ट ऑफ एशिया बैठक में हिस्सा लेंगी। ये बैठक अफगानिस्तान के मुद्दे पर हो रही है। केंद्रीय राज्य मंत्री राजीव प्रताप रूडी ने कल सुषमा के दौरे की पुष्टि करते हुए कहा,
ये भी तय है कि श्रीमती सुषमा स्वराज विदेश मंत्री कल पाकिस्तान जाएंगी, इस्लामाबाद जाएंगी।
विदेश मंत्री ऐसे समय में इस्लामाबाद जा रही हैं जब भारत और पाकिस्तान के बीच एक बार फिर संवाद होने लगा है। करीब एक हफ्ते पहले पेरिस में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के बीच मुलाकात हुई थी। इसके बाद रविवार को बैंकॉक में दोनों देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के बीच बैठक हुई। इस बैठक में चरमपंथ, शांति, सुरक्षा और जम्मू कश्मीर समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। भारत पाकिस्तान के बीच शुरू हुई बातचीत को लेकर कल राज्यसभा में कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने सवाल उठाया और प्रधानमंत्री से सदन को इस बारे में जानकारी देने को कहा।
We would demand that the government takes the parliament into confidence and the prime minister shares.
हम मांग करते हैं कि सरकार संसद को भरोसे में ले और प्रधानमंत्री इस बात को साझा करें कि उनके और प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के बीच क्या सहमति बनी है। हम समझते हैं कि इसी सहमति के मुताबिक भारत की विदेश मंत्री कल इस्लामाबाद जा रही हैं।
उधर सरकार की तरफ से केंद्रीय राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि सरकार के लिए देश का हित सबसे ऊपर है। उन्होंने बताया कि विदेश मंत्री सुषमा स्वराज इस बारे में 10 दिसंबर को संसद में जानकारी देंगी।
जो राष्ट्रीय हित है वो हम सबके लिए सर्वोपरि है और नेशनल इंटरेस्ट के प्रति हम सबका कमिटमेंट बहुत स्ट्रांग है। जहाँ तक सवाल है जिन इश्यूज को आपने कहा है, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि विदेश मंत्री महोदया 10 तारीख को इसी सदन में आएंगी और जिन विषयों को आपने रखा है उन सारे मुद्दों पर वो जानकारी देंगी।
भारत पाकिस्तान के संबंधों पर नजर रखने वाले विशेषज्ञ सुषमा स्वराज के पाकिस्तान दौरे को लेकर बड़ी उम्मीदें लगाने के हक में नहीं है। दक्षिण एशिया मामलों के विशेषज्ञ सुशांत सरीन कहते हैं,
नहीं देखिए, एक तो सुषमा जी जा रही हैं, वो जा रही हैं अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में जो हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस है, तो अब होना तो नहीं चाहिए कि सुषमा जी कोई एक द्विपक्षीय बातचीत में पड़े वहां पर, लेकिन अगर वो कर लें तो इनका पता भी नहीं है तो ये वो भी कर सकती हैं।
भारतीय विदेश मंत्री भले ही अफगानिस्तान को लेकर हो रही बैठक में हिस्सा लेने जा रही हों, लेकिन इस बात पर हर किसी की नजर होगी कि वो इस्लामाबाद में किससे मिलती हैं और क्या कहती हैं, और क्या उनका ये दौरा भारत और पाकिस्तान के रिश्तों को बेहतर करने में कोई मदद कर पाएगा।
तो ये थे अमल चौधरी। किसी भी प्राकृतिक आपदा में प्रभावित लोगों को हर तरह की राहत सामग्री दी जाती है, चाहे वो कंबल हो, खाने का सामान हो या फिर वक्ती तौर पर घर बनाने के लिए टेंट और तिरपाल। लेकिन आपने कभी भी ये सुना है कि महिलाओं के लिए सैनिटरी नैपकिन बांटा गया हो? जी हाँ, बाढ़ प्रभावित चेन्नई इस बार एक नई मिसाल पेश की जा रही है। करीब 8 लोगों के एक ग्रुप ने बाढ़ प्रभावित इलाकों की महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन बांटने की मुहिम शुरू की है और ये ग्रुप अब तक 10,000 महिलाओं को नैपकिन पहुंचा चुका है। इस ग्रुप के सदस्यों से बीबीसी संवाददाता नितिन श्रीवास्तव ने बात की।
हम चेन्नई में कुछ स्टूडेंट्स के साथ घूम रहे हैं, कुछ इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं, कुछ दूसरे बैकग्राउंड के हैं, और वो कल भी हमें मिले थे, लेकिन कल वो कंबल बांट रहे थे। आज सुबह से उन लोगों ने एक बड़ी दिलचस्प सी मुहिम शुरू की है, बहुत ज़रूरी मुहिम है। मैं कहूँगा अभी तक कभी भी किस तरह के डिजास्टर में मैंने नहीं देखा ऐसे लोगों को। ये लोग सैनिटरी नैपकिन्स बांट रहे हैं। हाउ मेनी सैनिटरी नैपकिन्स हैव यू ऑल डिस्ट्रीब्यूटेड दिस मॉर्निंग?
10,000
आप, व्हाट्स योर नेम? आपका नाम?
प्रदीप।
प्रदीप ये बता रहे हैं कि वो और उनके 8 मित्र जो इस वक्त मेरे साथ हैं, वो लोग 10,000 सैनिटरी नैपकिन चेन्नई के अलग अलग इलाकों में जो बाढ़ से ग्रसित थे वहां पर महिलाओं तक पहुंचा चुके हैं। व्हाट आर द प्लान्स? हाउ मेनी मोर डू यू वांट टू डिस्ट्रीब्यूट?
वी आर प्लानिंग टू डिस्ट्रीब्यूट अराउंड 22,000 सर, एंड इट्स अराइविंग बाय टुडे नाइट।
प्रदीप के मुताबिक 22,000 सैनिटरी नैपकिन्स और आ रहे हैं जो ये कल परसों नर्सों में महिलाओं तक पहुंचाएंगे। हाउ डिड दिस आइडिया कम टू यू? कैसे, हाउ डिड यू स्टार्ट डूइंग
दिस? दिस इज आवर चेन्नई एंड वी हैव टू हेल्प इट, एंड वी आर द स्टूडेंट्स हु जॉइंड हैंड्स एंड वी आर हेल्पिंग चेन्नई।
प्रदीप कह रहे हैं ये हमारी चेन्नई है और हम सारे स्टूडेंट्स हैं, हमें चेन्नई के लिए कुछ करना है। प्रदीप ये बताइए, ये हाउ डिड यू स्टार्ट दिस एक्सरसाइज? हाउ डिड यू स्टार्ट कलेक्टिंग फंड्स? आपने ये एक्सरसाइज शुरू कैसे की और पैसा कैसे आया? हाउ डिड यू गेट मनी फॉर दिस?
या वी हैव सम फंड्स व्हिच वी पोस्टेड इन एफबी थ्रू दिस मेनी फंड्स।
मतलब फेसबुक पे आपने पोस्ट किया? यू पोस्टेड ऑन फेसबुक? फेसबुक किया, उसके बाद क्या हुआ?
या वी पोस्टेड इन फेसबुक एंड थ्रू दिस वी गॉट सम फंड्स व्हिच इज हेल्पफुल टू अस इन हेल्पिंग चेन्नई।
فیس بک کے ذریعے آپ لوگوں نے مہم چلائی سوشل میڈیا کے ذریعے اور آپ کے پاس پیسے آئے ابھی بھی کیا how many of contributions are coming in now how many of people are contributing
sir more than 50 people are contributing so far
more than 50 سے زیادہ لوگ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں اور یہ where are these sanitary napkins coming from where are you buying them from
it's from Teni sir Teni
کر کے جگہ ہے کڈلور میں جہاں سے پردیپ کے مطابق یہ napkins آ رہے ہیں ایک آخری سوال پردیپ جب آپ تمام جگہ سینیٹری نیپکنس وغیرہ لے کر جاتے ہیں تو کیا لگتا ہے مہیلاؤں کو واقعی میں اس کی بہت ضرورت تھی اور کیا تھوڑا نگلیکٹ ہوا ہے when you carry such packets to places where women are in distress do you think that this help should have arrived before یہ پہلے مدد دینی چاہیے تھی
yeah this help should have done first but you are making it somewhat later but this is extremely good for the people now we are doing now
and you are doing now And what are these women saying to you, to whom you give the napkins? I'm sure they'll be very thankful because they're all stranded. Ye mahila aap se kya kehti hain, jo apne gharon se dur hain, beghar ho chuki hain, what do they say to you?
They said they were searching for a long time for these napkins, but they got very late, but they were very happy for this.
بہت بہت شکریہ پردیپ پردیپ نے آخری میں کہا کہ وہ جن جن مہیلاؤں کو ان کا گروپ یہ سینیٹری نیپکنس مہیا کراتا ہے وہ ان کو دھنیواد دیتی ہیں ان سے کہتی ہیں کہ جب سے یہ قہر برپا ہے پچھلے 5-6 دن سے تب سے وہ اس کی تلاش میں تھیں اور ان سب کا شکریہ ادا کرتی ہیں نتن شریواستو بی بی سی چنئی سے
اور اب چلتے ہیں پیرس فرانس کی راجدھانی پیرس میں چل رہے جلوایو پریورتن سمیلن میں منتری استر کی وارتا شروع ہو گئی ہے ہمارے سہیوگی واتسل رائے نے پیرس میں موجود بی بی سی کے پریاورن سنواداتا نوین سن کھڑکا سے بات کی اور وہاں کے تازہ حالات کے بارے میں جانکاری لی
منتری استریہ جو بیٹھک شروع ہوا ہے ویسے بھاشنی ہو رہے ہیں خاص کر کے پریاورن منتری جو آئے ہیں سارے دیش کے لیکن یہ سیگمنٹ شروع ہونے سے ٹھیک ایک دن پہلے بھارتیہ پریاورن منتری پرکاش جاویڈیکر نے ایک اسٹیٹمنٹ ایشو کی ہے جہاں انہوں نے کہا ہے کہ بھارت کا اس سمیلن کے لیے پورا سہیوگ رہے گا لیکن اگر وہاں وکاسشیل دیشوں کی وکاس کرنے کے ادھیکار پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا یہ جو کاربن کٹوتی کی کام یہ پورے کے پورے یہ وکست دیشوں کو کرنا پڑے گا یہ انہوں نے اسپشٹ کیا ہے تو دیکھیے یہ اڑان جو ہے یہ کافی مہتوپورن ہے ٹھیک اس سے آگے آیا ہے بہت سارے دیش کہتے ہیں کہ ایسا ہونا ہی چاہیے لیکن آپ جانتے ہیں کہ وکست دیشوں ہیں جو یہ نہیں مانتے وہی مدعا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے جو 3-4 دن جو منتری استریہ وارتا ہوتی ہے بیٹھک ہوتی ہے نیگوشیشن ہوتے ہیں وہاں کون کس کو منائے گا یہی دیکھنا ہے
اب نوین جی آپ پیرس میں موجود ہیں آپ بھارت کے رخ کو کتنا اور کن دیشوں کا سمرتھن ملتا ہوا دیکھ رہے ہیں
دیکھیے ایسا ہے کہ جو بھارت کا جو جس طرح سے درت گتی میں وکاس کر رہے ہیں دیش ہے نا جیسے کہ چین برازیل دکشن افریقہ یا پھر دیکھیے انڈونیشیا جیسے دیش ہیں اور ویسے کئی الپ وکست دیش جو ہیں وہ بھی سمرتھن کرتے ہیں لیکن وہاں کچھ یہ جو تاپمان کی وردھی کی بات ہے اس میں جو 2 degree اور 1.5 degree کی بات ہے وہاں جو فرق ہے اس طرح کی جو ڈفرینسز تو ہیں یہ جو میں نے بتایا بھارت کی پوزیشن کے کارن اور انیہ بھارت کی جیسے ہی جو اڑان لے رہے ہیں اور اس کی وجہ سے اور دوسری طرف جو وکست دیش کی اڑان ہے اس کی وجہ سے جو ایک پرکار کی اسٹیلمیٹ کی سچویشن ہے نا اس سے پار پانے کے لیے جو آئرلینڈ دیش فرانس ہے اس نے کیا کر دیا ہے کہ یہاں تقریباً 1 dozen سے زیادہ جو فیسلٹیٹرز نیوکت کیے ہیں اور ہر ایک جو ہے ٹیم میں 2-2 فیسلٹیٹرز ایک وکست دیش کی اور ایک دوسرے جو ہے وکاسشیل دیش کی تو بیلنس کے حساب سے جو مدعے آئے ہیں باہر ان سے نپٹنا ہے ان کو سلجھانا ہے اب باقی جو 4 دن بچے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو فیسلٹیٹرز ہیں یہ سرچ کرتا جو ہے یہ وہ کام کر پاتے ہیں یا نہیں
جی نوین جی اوروت تو بہت ہیں اور وقت کم ہے ایسے میں آپ کیا کوئی پیرس میں سمجھوتا ہونے کے آثار دیکھتے ہیں
اب دیکھیے ایک بات تو طے ہے کہ یہ ایک کسی نہ کسی طرح کی سمجھوتا کریں گے سہمتی کریں گے اب لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ سہمتی تو ہوگی سائن بھی کریں گے اور جشن بھی منائیں گے لیکن وہ جو سہمتی کی کوئی ارتھ ہوگی اس سے جو ہمارا جو کاغذ میں آپ سہمتی کریں گے صحیح کریں گے اور گھوشنا کریں گے کہ ہم نے سہمتی کر دی لیکن بنیادی طور پر جو سہمتی کریں گے آپ اس سے جلوایو پریورتن کی جو سمسیا ہے وہ کم ہوگی اس سے ہم جوت پائیں گے پرشن یہ ہے تو اسی لیے تو ارتھ پورن ہوگا یا نہیں कितनी कार्बन कटौती होगी, पैसे कितने दिए जाएंगे, जो गरीब देश है क्लाइमेट चेंज जलवायु परिवर्तन की जो इम्पैक्ट देख रहे हैं उससे जीने के लिए पैसे चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसे चाहिए। वैसे देखिए भारत जैसे देश भी पैसे मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें जो टेक्नोलॉजी है उसके लिए भी पैसे चाहिए। तो ये जो कार्बन कटौती का विशाल मुद्दा है और पैसे का भी उतना ही बड़ा मुद्दा है, ये सब में अगर अर्थपूर्ण हिसाब से सहमति होता है तो लोग कहते हैं कि हाँ भाई ठीक हुआ। लेकिन बहुत सारे लोगों का मानना है कि अगर इन मुद्दों को अगर संबोधन नहीं करते हुए सहमति किए तो उस सहमति की क्या अर्थ।
पेरिस से ये थे बीबीसी के पर्यावरण संवाददाता नवीन सेठ खड़ का, और अब बात उनकी जिन खबरों पर रहेगी आज हमारी नजर।
बिजली संशोधन विधेयक 2014 पर बातचीत असफल होने के बाद इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉयज एंड इंजीनियर्स की राष्ट्रीय समन्वय समिति ने आज एक दिन की राष्ट्रव्यापी हड़ताल की घोषणा की है। संभावना है कि इस हड़ताल में करीब 12 लाख कर्मचारी और इंजीनियर भाग लें। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज हार्ट ऑफ एशिया की 5वीं मंत्री स्तरीय बैठक में भाग लेने के लिए आज पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पहुँचेंगी। सुषमा स्वराज पाकिस्तान के विदेश मंत्री सरताज अजीज से मुलाकात करेंगी। उच्च शिक्षा में फेलोशिप के फंड में कटौती करने के यूनियन ग्रांट्स कमीशन यानी यूजीसी के फैसले के खिलाफ ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन ऑक्यूपाई यूजीसी नाम की मुहिम चला रही है। इसके तहत 8 और 9 दिसंबर को भारत भर के छात्र दिल्ली में इकट्ठा हो रहे हैं। आज आंदोलनकारी छात्र जंतर मंतर से यूजीसी के दफ्तर तक मार्च करेंगे और यूजीसी के दफ्तर का घेराव करेंगे। नेशनल हेराल्ड मामले में दिल्ली हाईकोर्ट के कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी को पेशी में छूट देने से इनकार करने के बाद इन दोनों को आज पटियाला हाउस कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई के लिए पेश होना होगा। कांग्रेस ने कहा है कि वह सुबह ही हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। लंदन के डाउनिंग स्ट्रीट में सेना के सेवानिवृत्त अधिकारी सीरिया में इस्लामिक स्टेट पर हवाई हमलों में ब्रिटेन के शामिल होने के खिलाफ अपने तमगे वापस करेंगे। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में सीरिया के विपक्षी दल सऊदी अरब की मेजबानी में बैठक करेंगे। इस बैठक का मकसद राष्ट्रपति असद की सरकार से बातचीत करने से पहले अपने संयुक्त रवैये को तय करना है।
और अब एक खास रिपोर्ट। दिल्ली में बेघरों की संख्या कितनी है किसी को शायद पता नहीं, क्योंकि इस बारे में जो सरकारी आंकड़े हैं वे सिर्फ उन्हीं जगहों तक के हैं जहां सरकार ने रैन बसेरे बनवा रखे हैं। ऐसे अनुमान हैं कि दिल्ली की सड़कों पर रहने वालों बेघरों की संख्या 3 लाख के करीब हो सकती है। ये वो लोग हैं जो अपना पेट पालने के लिए हर रोज़ मशक्क़त करते हैं, कूड़ा चुनते हैं, शादी ब्याहों में प्लेटें साफ करते हैं और मजदूरी करते हैं। ये लोग जीने के लिए संघर्ष करते हैं और अभाव और गुमनामी में मर जाते हैं। दिल्ली के बेघरों पर सलमान रावी की ये खास रिपोर्ट।
ये वृद्ध दंपति सड़कों पर ही अपना जीवन बसर करती है। एक फुटपाथ के बाद दूसरा फुटपाथ, यही इनकी दुनिया है जहां पूरी जिंदगी ये बेघर और बेचारे बनकर रह गए हैं। इन्हीं की तरह 70 साल के राम बहादुर पिछले 3 दशकों से भी ज्यादा से दिल्ली की सड़कों पर रह रहे हैं। वो मायूस भी हैं और कहते हैं कि अब उनकी जिंदगी बस चंद दिनों की है, क्योंकि वो अपने जीवन का बड़ा हिस्सा अब सड़कों पर ही काट चुके हैं।
70 साल हो गया, कहाँ जाना मैंने, अभी भी खेत लो कोई भी ले जाओ मेरे, कहाँ जाना, अब तो 1-2 साल बचा है साहब।
नहीं अभी और रहेंगे,
नहीं
अभी फिट हैं,
इतना नहीं है बाबू, अब क्या है, अब रोटी खाना मर जाना, चोरी नहीं करते, मार के खाते।
अनुमानों के मुताबिक राम बहादुर की तरह ही दिल्ली की सड़कों पर गुजर बसर करने वालों की तादाद 3 लाख से भी ज्यादा है। इनमें महिलाओं और बच्चों की तादाद भी काफी है। जिनके हाथ पांव सलामत हैं वो किसी तरह गुजारा कर लेते हैं, मगर जो शारीरिक रूप से अक्षम हैं उनकी जिंदगी उसी नर्क की तरह है जिसकी कल्पना कर लोगों की रूह सिहर जाएगी। इन्हीं में से एक हैं राजेंद्र।
नाम राजेंद्र है। कबाड़ा बिनने जा रहा था, रोड पार कर रहा था, मोटरसाइकिल वाला मारा था टक्कर, ये हड्डी टूट कैसे हो गया। हम 15 दिन पटरी में पड़े पड़े किरा वरा हो गया। उसके बाद 15 दिन के बाद कोई आदमी उठवाया कर पुलिस वाला छोड़ कर भाग गया। कहता क्या हुआ, हम बोले एक्सीडेंट हो गया। तो पुलिस वाला कहता चल चल ठेस लग गया होगा, वो छोड़ कर भाग गया। 15 दिन पड़े पड़े हम मरने वाला हो गया। कोई लड़का जानने वाला मिला, उठा के लाया यहाँ। तो सरदार जो रोटी बांटता है वो हमारा हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। अब डॉक्टर बोला पैर खराब हो गया, कीड़ा लग गया, पैर कटेगा, पैर कट गया। उसके बाद हम ऐसे आश्रम उश्रम में रहा, 35 साल हो गया है।
शारीरिक अक्षमता से जूझ रहे जगदीश शर्मा की भी कहानी राजेंद्र जैसी ही है। एक तो गरीबी की मार और उस पर शारीरिक अक्षमता, अब उन्हें पता नहीं कि क्या करें।
मैं लग सर लोया लग गया था, तो हमने वो नहीं किया, तो अब ये पैर बिल्कुल, हम डॉक्टर को बोलते सर काट दो, रात भर सो तो लें, ना सोने देता है ना चलने देता है। भाजी हम क्या करें, हमारे माँ बाप यहीं ख़त्म हो गए तो हम यहीं रह गए। 18 साल से यहीं रह रहा हूँ। ये कश्मीर के जब मैं आया था, जब मैं चड्डी पहना नहीं आता, जब से मैं रह रहा हूँ।
ISBT बस अड्डे के पास मेरी मुलाकात राजेंद्र दुबे से हुई, जो किसी व्यवसायी के कहने पर रोज फुटपाथ पर रहने वाले बेघरों को खाना खिलाने का काम करते हैं।
क्या खिला रहे हैं सर?
आपके सामने ही है जी, जो है
जी, क्या है? क्या?
ये राइस है, इसमें आलू गोभी बड़ी, इसके साथ में चने की दाल।
रोज खिलाते हैं?
हाँ जी हाँ, यही टाइम होता है 1 बजे का।
तो ये मतलब सरकार की तरफ से? आप
सरकार कहाँ देती है, वो पाए अपने आप ही भर ले, वो कहाँ देना चाहती है भाई जी। इतना सरकार अगर ध्यान नहीं, ये हमारा है कोई एक खास व्यक्ति है, वो हमें कुछ देते हैं, हम करते हैं, हला होता तो उन्हीं की तरफ से है, लेकिन उसमें हमें भी खर्चा मिलता है।
बेघरों और सूचना के अधिकार के लिए काम करने वाले नंदलाल का कहना है कि कश्मीरी गेट और यमुना के पुस्ता के नज़दीक सबसे ज़्यादा बेघर लोग रहते हैं। उसी तरह वो कहते हैं कि हर साल कश्मीरी गेट थाने में सबसे ज़्यादा बेघरों की मौतें भी दर्ज की जाती हैं। नंदलाल का कहना है कि कुछ एक गैर सरकारी संस्थाओं और कुछ चुनिंदा लोगों के अलावा खुले आसमान के नीचे रह रहे लोगों के बारे में कोई नहीं सोचता।
बहुत मुश्किल है, लेकिन अब जैसे तैसे समझ लीजिए कि कीड़े मकोड़ों के जैसे है हम लोगों की ज़िंदगी। हम लोग कैसे कैसे ठंड को काटते हैं, कैसे कैसे गुजारते हैं, कैसे कैसे जीवन अपने को चलाते हैं। बेघर आदमी को कौन देख पाएगा? बेघर आदमी को ये NGO वाले जो हैं हमारे, वो कुछ हद तक अब, क्योंकि उनको भी फंड की ज़रूरत पड़ती है देखने के लिए। सरकार तो कहने के लिए ही सरकार अपनी वो करती है, लेकिन वो वास्तविक धरातल पे वो स्थिति नहीं पैदा कर पाती है जो वास्तव में बेघर लोगों के लिए होना चाहिए। खास करके विकलांग लोगों के लिए तो काफ़ी मुश्किल है, उनके लिए कोई शेल्टर नहीं है।
हालांकि दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को लिखे अपने प्रतिवेदन में कहा है कि दिल्ली की सड़कों पर रह रहे बेघरों की तादाद 10,000 के आसपास है। सरकार का आंकड़ा उन खचाखच भरे 300 रैन बसेरों में रहने वाले लोगों पर आधारित है, जिन्हें रैन बसेरों में जगह नहीं मिल सकी, उनका जिक्र सरकारी आंकड़ों में भी नहीं है। वो गुमनामी में जीते हैं और गुमनामी में ही मर जाते हैं। सलमान रावी, BBC दिल्ली।
तो सलमान रावी की ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें ज़रूर लिखिएगा। और अब वक्त हो चला अखबारों की समीक्षा का, और मेरी सहयोगी प्रगति इस वक्त अखबारों के साथ मौजूद हैं। जी प्रगति
जी,
बताएं।
इकबाल साहब, आज जो सभी अखबारों ने खबरें ली हैं वो उनमें है सोनिया, राहुल गांधी की आज होगी निचली अदालत में पेशी, भारत की रिकॉर्ड जीत, टेस्ट में भी बना नंबर 2, ये क्रिकेट की खबर है, केजरीवाल के सम विषम फार्मूले को हाईकोर्ट में चुनौती दे दी गई है, और उनके मंत्री ने कहा है कि रविवार को और दुपहियों के लिए ये सम विषम फार्मूला लागू नहीं होगा। सुषमा स्वराज आज जाएंगी पाकिस्तान, और लोकपाल के दायरे में लाए जाएं सीवीसी और सीबीआई, ऐसी मांग हुई है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि एसिड अटैक पीड़ितों का मुफ्त इलाज कराएं राज्य, ये दैनिक भास्कर में खबर है। और अमर उजाला ने ही इसकी खबर आगे ली है कि तेजाब पीड़ितों को आरक्षण संभव, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि निशक्तों की सूची में लाने पर केंद्र विचार करें। उसके बाद अमर उजाला में एक खबर है कि एनजीटी ने रेलवे बोर्ड पर लगाया है 5 लाख का जुर्माना, क्योंकि प्लेटफॉर्म और ट्रैक पर सफाई में कोताही बरती गई थी। दक्षिण कश्मीर में सीआरपीएफ काफिले पर हमला हुआ है और 7 जवान जख्मी हुए हैं, ये भी अमर उजाला की खबर है। और प्रदूषण से चीन में रेड अलर्ट हो गया है लेकिन दिल्ली बेपरवाह है। दैनिक भास्कर में है संजीव चतुर्वेदी ने मैग्सेसे पुरस्कार की राशि पीएम राहत कोष में दे दी है। और मेट्रो पिलर में फंसी बिल्ली 44 घंटे चला रेस्क्यू, ये बदरपुर YMCA मेट्रो लाइन का वाकया है। नई दुनिया की खबर है कि 55 लाख रिश्वत मांग रहे मध्य प्रदेश के मुख्य वन संरक्षक का ऑडियो वायरल हो गया है। पेटलावत ब्लास्ट में के जिम्मेदार जो थे राजेंद्र कांसवा, वो ये पुष्टि हो गई है कि वो उस ब्लास्ट में ही मारे गए थे। दैनिक जागरण में खबर है कि कम व्यस्त समय में सस्ती सीएनजी मिलने पर केंद्र विचार कर रहा है कि एनसीआर में ऐसे वृहद योजना तैयार की जाए कि इसमें 50 नए सीएनजी स्टेशन भी खोले जाएं।
जी बहुत शुक्रिया प्रगति आपका। और अब खेल समाचार।
खेल समाचारों के साथ मैं हूं आदेश कुमार गुप्त। आखिरकार भारतीय क्रिकेट टीम ने कल दिल्ली का फिरोजशाह कोटला मैदान भी फतह किया और चौथे और आखिरी टेस्ट मैच में कल अंतिम दिन दुनिया की नंबर एक टीम दक्षिण अफ्रीका को 337 रनों से करारी मात दी। इससे पहले पूरी सीरीज पिच की चर्चा में ही छाई रही। 3-3 दिन में समाप्त होते टेस्ट मैचों से भारतीय गेंदबाजों की कामयाबी भी कहीं छुप सी गई थी, लेकिन कल खेल समाप्त होने के बाद आखिरकार भारत के कप्तान विराट कोहली के चेहरे की मुस्कान और सवालों के जवाब देते समय खिलखिलाहट अलग ही अंदाज में दिखाई दी।
मैं सवाल की बहुत देर से वेट कर रहा था। 5-6 सवाल हो गए ऐसा ही मैं। तो ना कोई पिच पे सवाल आया, ना कोई टर्न होने पे सवाल आया। बाकी देखिए, हम हमेशा से ये बिलीव करते हैं कि हम कहीं भी जीत सकते हैं दुनिया में और किसी भी टीम के अगेंस्ट अच्छा कर सकते हैं।
वैसे इस पूरी सीरीज में पहली बार दिल्ली में दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाजों ने दिल लगाकर बल्लेबाजी की और चौथे और पांचवें दिन भारतीय गेंदबाजों के दिलों की धड़कनें बढ़ाई रखी। दक्षिण अफ्रीका के सामने जीत के लिए 481 रनों का लक्ष्य था, लेकिन उनकी पूरी टीम केवल 143 रनों पर सिमट गई। अब रनों से ये अंदाजा ना लगाया जाए कि उन्होंने बल्लेबाजी कम की, ऐसा कतई नहीं है। इसके लिए उन्होंने पूरे 143.1 ओवर बल्लेबाजी की और ऑल आउट होने से पहले भारत के 8 गेंदबाजों का पसीना निकाला। दक्षिण अफ्रीका के एबी डिविलियर्स ने 43 रनों के लिए विकेट पर 354 मिनट बिताए और 244 गेंदों का सामना किया। जैसे ही डिविलियर्स कल चायकाल के बाद आर अश्विन की गेंद पर रविंद्र जडेजा के हाथों लपके गए, वैसे ही भारतीय टीम की जीत तय हो गई। भारत के आर अश्विन ने 61 रन देकर 5, उमेश यादव ने 9 रन देकर 3 और रविंद्र जडेजा ने 26 रन देकर 2 विकेट हासिल किए। पहली पारी में 127 और दूसरी पारी में पूरे 100 रन बनाकर नाबाद रहने वाले अजिंक्य रहाणे मैन ऑफ द मैच और आर अश्विन मैन ऑफ द सीरीज रहे। उधर कल प्रीमियर बैडमिंटन लीग के लिए खिलाड़ियों की नीलामी हुई, जिसमें उम्मीदों के अनुरूप भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल $1,00,000 में लखनऊ की अवध वॉरियर्स और पुरुषों में दुनिया के पूर्व नंबर एक खिलाड़ी ली चोंग वेई भी $1,00,000 में ही हैदराबाद हंटर्स की टीम के नाम हो गए।
तो ये थे आदर्श गुप्त और अब वक्त हो चला प्रमुख समाचारों का।
बीबीसी समाचार। भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज अफगानिस्तान के मुद्दे पर होने वाली हार्ट ऑफ एशिया बैठक में हिस्सा लेने के लिए पाकिस्तान पहुंच रही हैं। संभावना है कि इस दौरान वे पाकिस्तान के विदेश मंत्री सरताज अजीज से भी मुलाकात करें। अमरीकी जांच एजेंसी FBI ने कहा है कि कैलिफोर्निया के सैन बर्नार्डिनो में जिस दंपति ने गोलीबारी की थी वो कुछ समय से चरमपंथी गतिविधियों की तरफ आकर्षित थे। उधर रिपब्लिकन पार्टी से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के दावेदार डोनाल्ड ट्रंप ने मांग की है कि फिलहाल कुछ समय के लिए मुसलमानों के अमरीका में दाखिल होने पर पूरी तरह से रोक लगा दी जाए। सीरिया में सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि देश के उत्तर पूर्व में हुए हवाई हमलों में कुछ बच्चों समेत कम से कम 26 आम नागरिक मारे गए हैं। इसकी बहुत संभावना है कि यह हवाई हमले अमरीकी नेतृत्व वाली गठबंधन सेना ने किए। अमरीका ने इसकी कोई पुष्टि नहीं की है, लेकिन बगदाद में एक प्रवक्ता ने कहा है कि मामले की जाँच की जाएगी। ब्राज़ील की कांग्रेस ने एक समिति के गठन की प्रक्रिया शुरू करी है। ये राष्ट्रपति डिल्मा रूसेफ पर अभियोग लगाना चाहिए या नहीं, इस पर फैसला करेगी। बीबीसी समाचार।
तो नमस्कार, भारत की यह सभा यहीं समाप्त होती है। आज स्टूडियो की जिम्मेदारी संभाली राजेश चौहान ने। आपसे अगली मुलाकात होगी अभी से ठीक एक घंटे बाद यानी 8 बजे कार्यक्रम विश्व भारती में, लेकिन आप आ सकते हैं हमारी वेबसाइट पर 2400 घंटे। और अब इकबाल अहमद को दीजिए इजाजत। नमस्कार।